15th chapter. Chautha shlok mein tatap param padam तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतानाम् अनिवर्तन्ति भूयात् तमेव चाध्यम् पुरुषम् प्रपद्ये। जो आदि पुरुष है, जो इस वृक्ष का भी आदि है, वैसे परम पुरुष प्रपद्ये मैं उनका शरण लेता हूं करके कहा गया है। तो शरण कैसे लेना चाहिए और कैसे लिया जाएगा शरण? ये जो है विधि, भगवान को शरणागत की प्राप्त, शरणागत होने की विधि, ये श्लोक में है, पांचवां श्लोक।
निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंदे विमुक्ता सुख दुख संगे नचंत्य मूढ़ा पद्मभ्ययंता।
तो ये श्लोक का सबसे पहला गुण क्या है? निर्माण, निर्माण मोहा।
निर्माण का मतलब क्या है? व्हाट इज वेरी ऑफ निर्माण?
मान सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं रखना, यानी एक प्रकार का एक नम्रता। नम्रता का डेफिनेशन अनेकों जगह अलग बताया गया है, लेकिन उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है कि कोई मान सम्मान की उपेक्षा नहीं रखना और अपने आप को एकदम बहुत तुच्छ मानना, ये नम्रता है। कंसिडरिंग वन सेल्फ टू बी सो यूजलेस, आई एम नथिंग। प्रभुपाद लिखते हैं, द फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज दैट वन शुड बी not be deluded by pride, because the conditioned soul is puffed up thinking himself to be the lord of material nature. It is very difficult for him to surrender unto the supreme personality of Godhead. One should know by the cultivation of real knowledge that he is not the lord of material nature. The supreme personality of God is the lord. When one is free from delusion caused by pride, he can begin the process of surrender.
Sharanagati ka vidhi isse shuru hota hai। शरणागति के छह लक्षण हैं, वो मालूम है आपको? छह लक्षण क्या है?
वेरी गुड। कोई भगवान पूरा भगवदगीता की आखिरी में चरम श्लोक की भगवदगीता क्या है वो? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रज अहम् त्वाम् सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मास्टर। तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य है, मामेकम शरण व्रज अहम् त्वाम् सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मास्टर। शरणम, उस श्लोक की तात्पर्य में प्रभुपाद जी वो श्लोक कोट करते हैं। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्य विश्वासो गुप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपार्पण्य षड्विधा शरणागति। याद रखना अति आवश्यक है। और भक्तिनाथ ठाकुर ने एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है शरणागति है। आपके पास शरणागति सुने? थोड़े बहुत शरणागति, टोटल 50 सॉन्ग्स है उसके अंदर। शरणागति में भजन है भक्तिनाथ ठाकुर के।
तो उसमें पहला ही दैन्य, भले ही ये जो श्लोक में अनुकूल संकल्प प्रतिकूल स्वर्जनम वो लिखा हुआ है ऐसा लाइन में, लेकिन बक्तिनोद ठाकुर वो ऑर्डर चेंज करके बोलते सबसे पहला दैन्य, दैन्य होना चाहिए, उसके बाद गोपतृत्व वर्ण आत्मनिक्षेप कार्पण्य और अनुकूल संकल्प प्रतिकूल स्वर्जनम ये सब चीजें आता है। सबसे पहला दैन्य, दैन्य का मतलब यह है कि ये समझना कि मैं आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस, मैं मुझे असहाय अवस्था को महसूस करना, मैं कंप्लीट तुच्छ हूं, मैं असहाय हूं, मैं बहुत गिरा हुआ हूं, मैं बहुत पापी हूं। एक भजन है ना बक्तिनोद ठाकुर का, हमार जीवन सदा पापे रतो नहीं को निर्लेश, मैंने एक भी कुछ भी पुण्य नहीं किया, मैं केवल पापी व्यक्ति हूं। तो हे कृष्ण और मैंने क्या क्या पाप किया है, इतना आसक्त रहा है इन सब चीजों से, मैं आपको भूल गया हूं। तो ऐसे अपने आप को बार बार दूषित करना बहुत उपयोगी है हमारे जीवन में भी, मौका ढूंढते ही अपने आप को तुच्छ मानना, केवल मानना ही नहीं दूसरों के सामने कहना मैं गिरा हुआ हूं, मैं क्या करूं, अपने आप को क्या बोला जाए दूषित करना, दूषित मतलब दूषित करना नहीं क्या बोला जाए ऑडियो से प्रस्तुत करना, दूषित प्रस्तुत करना, सो लो सो कंटेमिनेटेड मैं गिरा हुआ हूं, ऐसे ऐसे करना, ये नम्रता आती है। और साथ साथ में दूसरों का हमेशा आपसे अच्छा उनसे अंदर क्या गुण है वो ढूंढना, ये शरणागति का सबसे पहला विधि है। निर्माण मोह, उसके बाद वेन वन इज फ्री फ्रॉम डेल्यूशन खास माई प्राइड ही कैन बिगिन द प्रोसेस सरेंडर, शुरुआत कर सकता है। फॉर वन हु इज ऑलवेज एक्सपेक्टिंग सम ऑनेस्ट मटीरियल वर्ल्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू सरेंडर सुप्रीम लॉर्ड, प्राइड इज ड्यू टू इल्यूजन, फॉर ऑल दो वन कम्स हियर स्टेज फॉर ब्रीफ टाइम एंड गोज अवे, he has a foolish notion that is the lord of this world, thus makes all things complicated, he is always in trouble, the whole world moves under this impression, people are considering the land, the earth belong to human society, they have divided the land under a false impression that they are the proprietors, one has to get out of this false notion that human society is the proprietor of this world. When one is freed from this false notion, he becomes free from the false association caused by family, social, national afflictions. These faulty associations bind one to the material world. After this stage, one has to develop spiritual knowledge. One has to cultivate knowledge of what is actually his own and what is actually not his own. And when one has understanding of a thing as they are, he becomes free from the dual conception of happiness and distress, pleasure and pain. He becomes full of knowledge that is possible for him to surrender to Supreme Personality of Godhead. तो उसके बाद बाकी सब गुण आता है, जैसे नम्रता आया, बाद में अन्य प्रकार का मोह से मुक्त हो जाना, जित संग दोषा यानी गलत संग से दूर रहना, आध्यात्म नित्य गलत संघ से जैसा दूर रहता है और अच्छे सत्संग में रहता है स्वाभाविक तरीके से उनका आध्यात्म नित्य मतलब नित्य भगवान की सेवा में रत रहना, और आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, जितना भगवान के सेवा में रत रहता है वो कामनाओं से भौतिक कामनाओं से दूर रहता है, और जितना कामनाओं से दूर रहता है भौतिक उलझन से उत्पन्न हुआ जो द्वंद्व है सुख और दुख ठंडी गर्मी से प्रभावित नहीं होता है, संदेह मुक्त सुख दुख संयम, और इस स्थिति में आने के बाद ही गच्छन के मूढ़ा, जो अमूढ़ा गच्छन्ती, इस प्रकार के जो सम्मोहित सम्मोहना से बचा हुआ व्यक्ति ही पदम अव्ययम तत् वो कहां जाता है, ऐसा पद को प्राप्त करता है जो अव्ययी है, यानी भगवान की धाम को प्राप्त करता है। हो तब प्रश्न उत्पन्न हुआ, कि आपने बोला कि भगवान की धाम में जाता है, तो क्या वो धाम का स्वभाव क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड? भगवान की धाम का उनका वर्णन करे, तो भगवान के धाम का वर्णन करे, क्या उधर जाने के बाद फिर वापस आना पड़ता है क्या? तो ये दो प्रश्नों का जवाब छठे श्लोक में देते हैं। टू क्वेश्चंस, भगवान की धाम का स्वभाव का वर्णन कीजिए, और दूसरा क्या उधर जाने के बाद वापस आना पड़ता है? नियम न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। बहुत फेमस श्लोक है। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? पढ़िए।
वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते।
भगवान के धाम में ये सूर्य चंद्रमा और बिजली की आवश्यकता क्यों नहीं है? और आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु चिन्मय है। चिंतामणि प्रकर सदनसु कल्प वृक्षा, तो उपाधि लिखते हैं, इन द स्पिरिचुअल स्काई देर इज नो नीड ऑफ सनशाइन। क्या शब्द है उधर? देर इज नो नीड ऑफ सनशाइन। दूसरा, देर इज नो नीड ऑफ मून शाइन। हिंदी में क्या लिखे पढ़िए इसका तात्पर्य में।
यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गुरु वृंदावन कहा जाता है। जिनमें आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोगों में के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है जिसे ब्रह्मज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्त्व अर्थात भौतिक जगत के से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोगों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है।
हाँ, आध्यात्मिक जगत का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको ब्रह्म संहिता में मिलेगा। ब्रह्म संहिता में सहस्त्रपत्र कमलम गोकुलाक्यम महत्पदम, ये श्लोक में वर्णन है। ये श्लोक से 6-7 श्लोक है पूरा, जैसे ईश्वर परमा कृष्ण श्लोक है, ये तो पहला श्लोक सबको मालूम है। ये दूसरा श्लोक है सहस्त्रपत्र कमलम, ये गोलोक क्या है? कमल के कितने कमल, कितने पंखुड़ियां हैं? और वो बीच वाला जो जगह है उसको क्या बोला जाता है? गोकुलाक्यम और महत्पदम, वो सबसे टॉप मोस्ट है। ऐसा पूरा बहुत सुंदर वर्णन है। जो भी गोलोक का डिस्क्रिप्शन सुनना चाहता है तो ब्रह्म संहिता पढ़ना चाहिए। उसका भाषा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। ब्रह्म संहिता जो है वो पूरा आपके पास 72 श्लोक है। ब्रह्म संहिता 64 या 72 है? 64 श्लोकस। ब्रह्म संहिता बुक है ना, उसके अंदर 64 है। हाँ, आपके पास जो पेपर दिया रहेगा, अरे वो तो स्तोत्र है, उसके अंदर स्तोत्र में नहीं, स्तोत्र जो है पहला श्लोक और 29 से 56 और पहला वो ब्रह्म संहिता का, और ब्रह्म बाकी श्लोकों में पढ़ना चाहिए। उसमें आध्यात्मिक जगत का ही वर्णन है संक्षिप्त में, बहुत परफेक्ट, और भौतिक जगत का ही वर्णन है। संक्षिप्त में, शॉर्टकट में सब जानना चाहते तो उधर से है ब्रह्म संहिता। हाँ, ब्रह्म ज्योति का एक अंश है वो महत्त्व के अंदर प्रवेश करके, वो सूर्य है इस भौतिक जगत में, वो सूर्य को शक्ति देता है ताकि ये सारा जगत को प्रज्वलित करे। हाँ, हाँ, बहुत टफ भाषा, बहुत टफ है, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना आप समझ लो। एक हफ्ते में एक श्लोक पढ़ो ना, क्या जाता है बोलो तो एक साल में आप पूरा ब्रह्म संहिता कर लोगे। एक साल में करने के बाद उसका 10% तो रहेगा ना, लेकिन 10% तो रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग प्रयास नहीं करते। एक्चुअली देखा जाए ना, वी वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम वेस्ट करते हम लोग, बिजी है वो है नाना प्रकार का बहाना बनाते हैं। ये सब बहाना, देखो जब तक शरीर है ना, शरीर से बहुत सारे काम निकाल सकते हो, जितना निकालोगे उतना निकलता है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए एक सरल विधि यह है कि आप जितना कर सकते हो ना उससे थोड़ा ज्यादा करने का प्रयास करो। आप देखोगे कि एक साल में डिफरेंस देखोगे, अरे आई कैन डू मोर, मेरे पास हर चीज के लिए टाइम, पढ़ने का भी टाइम है, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, सब कुछ है, बहुत सारे काम करने, वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू थिंक, और खासकर ब्रह्मचारी। और उसमें गोलोक वृंदावन धाम जो है वो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द वैकुंठस, सारे वैकुंठ लोकों में टॉप मोस्ट लोक है गोलोक वृंदावन धाम। हाँ,
जब तक जीव इस अहंकार में जगत में रहता है तब तक वो बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वो इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है तो ही वो मुक्त हो जाता है।
बस तमसा परस्तात, सुना है ये शब्द को, तमसा परस्तात, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, कहां है, कौन सा श्लोक है? कविम पुराण, कविम पूरा श्लोक पढ़िए। हाँ, स्वेश्वास्त्र उपनिषद का श्लोक है, कविम पुराण मनुषाशितारम मनोरणीयांश मनुस्पनेद्य सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम, सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम, बाद में आदित्य वर्णम तमस, भगवद्गीता में इधर है। वैसे श्वेता स्वरूप निषद में भी ये श्लोक है,
उसी में है, इसमें तो सिर्फ
तात्पर्य में है ना,
तात्पर्य में आदित्य वर्णम श्वेता
श्वेता स्वरूप निषद में बहुत सुंदर श्लोक है, तमेव विद्वानीति मुत्तमेति आदित्य वर्णम तमस परस्तात। तो भगवान का जो शरीर का रंग कैसा है, आदित्य वर्णम, सूर्य की जैसा बाती है, और ये तमसः परस्ताद, उसका मतलब क्या है, तमसः परस्ताद मतलब अंधकार से परे है। अंधकार क्या है, ये भौतिक जगत, ये भौतिक जगत को तमस कहा गया है, इट इज कॉल्ड तमस।
आदित्य वर्णम से मतलब क्या,
हाँ हाँ उनका रंग, उनका शरीर का जो कांति है वो आदित्य जैसा है, आदित्य सूर्य जैसा है और भौतिक जगत से परे है, बियॉन्ड मेटीरियल वर्ल्ड, तमसहा। ये भौतिक जगत को तमस कहा गया, इट्स कॉल्ड तमस, बहुत जगह कहा गया भौतिक जगत को तमस, तमस मतलब अंधकार। इसलिए सूर्य की आवश्यकता है, ये अंधकार है इसलिए सूर्य की आवश्यकता, लाइट की आवश्यकता है। वैसे ही श्लोक ये हो गया, वैसे उपनिषद ये जो श्लोक का आखिरी पैराग्राफ पढ़िए। हाँ,
यहाँ परमम शब्द मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और छह ऐश्वर्य से पूर्ण है। कठोपनिषद 2.2.15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक सूर्यो भांति चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, हमें कोई किसी साधन से नहीं।
वेरी गुड, ठीक है, ये उपनिषदों में कहा गया। तो अभी नेक्स्ट सातवां श्लोक, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना श्रेष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हाँ,
इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है।
ममैव अंशः, आपने ये देखा कि प्रभुपाद जी इंग्लिश में अंश शब्द को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अंश, वेरी गुड। उसको हिंदी में क्या अनुवाद करते हैं? मान लो कि आपके पास एक बाइक है, मोटर बाइक है, उसका पहिया एक अंश है, ठीक है, मोटर बाइक का। मान लो कि मोटर बाइक का पहिया निकाल दिया तो मोटर बाइक चल सकता है? भाग या अंग? एक पहिया जो है ना, मोटर बाइक वो अंग है ना, एक भाग है। जैसे हमारा शरीर है, हाथ मेरा पार्ट है, हाथ को काट के निकाल के बाजू में रख दिया जाए तो मैं एक हाथ से विहीन हो गया हूं। क्या भगवान भी ऐसे है क्या? हाँ? तो इसलिए प्रभुपाद जी ये अंश शब्द को अनुवाद इंग्लिश में पार्ट एंड पार्सल करते हैं। वो पार्ट है और सेपरेट पार्सल है। यानी वो पार्ट निकलने से भगवान को कुछ कम नहीं होता है, कुछ कमी महसूस नहीं होता। पूर्ण मदा पूर्ण विदम पूर्ण पूर्ण उदच्छते, भले ही ये पूर्ण उत्पन्न हो रहे या पूर्ण जीव भी उत्पन्न होते हैं भगवान से, ये जो जीव है वो भगवान के अंश होने पर भी, वो पूर्ण से विलग होने पर भी पूर्ण में कोई अभाव व्यक्त नहीं होता। इसलिए पार्ट भी है और पार्सल भी है। इसको हिंदी में पता नहीं कैसे अनुवाद किया जा सकता है, इसको मुश्किल है ना। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि भविष्य पुराण में ऐसी भविष्यवाणी है कि आइम क्लिम शिम, ये तीन शब्दों से बना हुआ एक भाषा में, मलेच्छों की भाषा में परम सत्य को प्रस्तुत किया जाएगा, यानी इंग्लिश में परम सत्य को प्रस्तुत किया जाएगा। अभी यही है प्रभुपाद जी कुछ ऐसे कैसे कुछ लॉर्डिंग ओवर मटेरियल नेचर और कुछ ऐसे शब्द है आज तक इंग्लिश में कोई भी इस्तेमाल नहीं किया ऐसा, पार्ट एंड पार्सल और कंडीशन्ड सोल। बहुत सारे ऐसे शब्द है इंग्लिश में, ये आज तक ऐसा कोई ऐसा ग्रह ऐसा कोई लेखक नहीं आया इस प्रकार प्रस्तुत करने वाला। एक्चुअली आप कोई अन्य आध्यात्मिक किताबें पढ़ोगे, प्रभुपाद जी का इंग्लिश पढ़ोगे, बहुत अंतर, उनका लैंग्वेज ही कुछ अलग है, स्पेशल लैंग्वेज भगवद गीता। भिन्नांश ऐसा अनुवाद किया ऐसा, हाँ वो तो टेक्निकली आता है, लेकिन जब ये पार्ट एंड पार्सल लिखा गया है तो उसको कैसे है? ऐसा है, ठीक है। तो आगे इसका तात्पर्य पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है।
इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है, जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि भक्त जीवन वो एक व्यस्तित्व धारण करता है, ऐसा नहीं है कि भक्त जीवन में वो एक व्यस्तित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वो परमेश्वर से एकाकार हो जाता है, वो सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विवरणांश उत्कीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम नरसिंह देव विष्णुमूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं।
हाँ, ये दो प्रकार के भगवान के अंश क्या है, एक
विभिन्नांश और स्वांश।
विभिन्नांश और
स्वांश,
ये विभिन्नांश कौन है? जीव, जीवा, जीव, देव देवता भी जीव है ना, वे ऑल्सो जीवस। शिव जी को छोड़ के दुर्गा तो शक्ति है भगवान की, शिव जी छोड़ के ब्रह्मा से सारे जितने भी देवता है वो सब जीव है, दे आर ऑल लिविंग एंटिटीज। और भगवान के स्वांश कौन है? विष्णु तत्व, राम नरसिंह वामन जितने भी है वो सब कौन है? स्वांश, स्वांश और विभिन्नांश। वेरी गुड।
नरसिंह विष्णु वैकुंठ में प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं, विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं, भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं, परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों के।
एक्चुअली हिंदी में बहुत सिमिलरली, जो सेपरेट एक्सपेंशन लिविंग एंटिटीज हैव देयर आइडेंटिटीज, स्वरूप नहीं है अपना, आइडेंटिटी को स्वरूप थोड़ी ना बोला जाता है, परिचय है, व्यक्तित्व है, ऐसा बोला सकता है, व्यक्तित्व है। हाँ, बाद में।
इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने परिचय होते हैं,
हाँ।
परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं,
हाँ।
जिनमें से स्वतंत्रता एक है, प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूत्र स्वतंत्र होता है, इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है।
आपको याद है इसका बताया था मैंने, आपने प्रश्न पूछा था, किसने पूछा, आपने पूछा था, आया ही क्यों है, इसे जवाब में क्या दिया था आपने, आपने पूछा था क्वेश्चन, बोलो उधर से इधर आया ही क्यों है, हाँ तो उसका जवाब में क्या दिया था, जीव के पास, हाँ यही बात प्रभुपाद लिखते हैं, एवरी लिविंग एनिटी एज एन इन्विंसो हैज एन इंडिविजुअलिटी एंड ए माइन्यूट फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस, माइन्यूट फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, बाय मिस यूज ऑफ दैट इंडिपेंडेंस वन बिकम्स कंडीशन सोल, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग से वो बद्ध जीव हो जाता है, एंड प्रॉपर यूज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑलवेज लिबरेटेड,
और उसके सही उपयोग से वो मुक्त बनता है।
In either place, he is qualitatively eternal and supreme Lord. In his liberated state, he is freed from material condition, he is under engagement with transcendental service under the Lord, and the conditions he is dominated by most material nature, and he forgets the transcendental loving service of the Lord. As a result, he struggles very hard to maintain his existence in the material world.
दोनों ही अवस्थाओं में वो भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वो इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्त को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है।
पूछिए महाराज क्या कहा। हाँ, जो एक बार जेल में जाता है फिर वापस जाता है जेल में, जन्म जाता नहीं है, जाना चाहता है तो जाना चाहता है तो क्या कैसे, जैसे आपने आग में हाथ लगाया जल गया निकाल दिया फिर वापस डालोगे, डालना चाहते हो तो क्या करेंगे, कभी भी स्वतंत्रता जब तक है उसका दोनों प्रकार का उपयोग भी कर सकता है दुरुपयोग भी कर सकता है। क्या चीज, जीव की तरह से डिसीशन नहीं है, स्वतंत्रता है कि नहीं, उसके अंदर भोगने की प्रवृत्ति है कि नहीं, आध्यात्मिक जगत में भोगने की प्रवृत्ति नहीं है जीव में, है प्रवृत्ति है, स्वतंत्रता भी है। जैसे मान लो कि जब इसका हमें ज्वाइन कर लिया पूरा सब कुछ आ गया शरणागत हो गया, अभी ऐसा होने से क्या वो बाहर जा नहीं सकता इंद्रियत्व करने के लिए, लेकिन वो स्वतंत्रता को सदुपयोग करके भगवान की सेवा में लगा है। जितने लोग हम इधर बैठे रूम में इंक्लूडिंग मी सभी फ्री है, कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। हाँ
हो
गया
कि मतलब कि लोग में जाते
भी आदमी के पास रहती है, क्योंकि आप जीव को भौतिक जगत में क्या क्या अनुभव हुआ सबका ज्ञान रहता है, एक बार हो गया तो हो गया, अभी बस
गलती हो गई
बस बस नहीं आना है। He knows this thing. कॉन्शियसनेस है ना, चेतना है ना, अस्तित्व में किसी को बताइए मत, अपने आप में रखिए, अपने आप में रखिए। पूरा सृष्टि है, पूरा जो सृष्टि है भौतिक जगत है और मटेरियल वर्ल्ड, वो ब्रह्मा जी का पूरा 100 साल वो किसके बराबर है, ब्रह्मा जी का 100 साल किसके बराबर है, विष्णु के, और विष्णु का सास किसके बराबर है, कृष्ण के, आध्यात्मिक जगत में आप कृष्ण का सेवा करते हुए कृष्ण का दर्शन करते हुए एक पलक के लिए भी कृष्ण को भूल जाओगे, मतलब ब्रह्मा जी का मतलब समझ रहे हैं ना, अभी मालूम पड़ रहा है भगवान को भूलने का क्या नतीजा है। एक बार मैं संडे मिस क्लास में ही बताया था, पूरा पूरा टाइम स्केल बताया, बता कि मैंने कहा एंड में कि सब ऐसे पूरे क्या बोल रहा है, कुछ सुनाओ लीला सुनाओ ऐसा कुछ, पूरा ब्रह्मा जी का इतना समय है इतना कलयुग है ऐसा पूरा टाइम स्केल बताया, बताएगा पूरा कृष्ण का एक पलक जो है वो महाविष्णु का एक सास के बराबर है, एक सास जो है ब्रह्मा जी का 100 साल के बराबर है, ब्रह्मा जी का जो 100 साल में मतलब एक साल में 12 महीना रहता है, 12 महीने में एक एक महीना 30 दिन का रहता है, 30 दिन 30 रात है, ब्रह्मा जी का एक दिन जो है उसके अंदर 14 मनु होते हैं, और एक दिन का अवधि जो है 43,20,000 वर्ष को हजार गुना किया जाए, ब्रह्मा जी का एक 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 12 घंटा होता है। तो ये सब सुन रहे थे, तो एक ने प्रश्न पूछा, तो ये सब का क्या फायदा? मैं बताऊं क्या फायदा है। ही फायदा है आध्यात्मिक जगत में, अगर एक पलक बोलते हैं इसको, एक पलक के लिए भी कृष्ण को अगर भूलोगे क्या सजा है मालूम है? पूरा वो हो जाए, वन सेकेंड। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है कि सबसे बड़ा नुकसान वो क्षण है जिस क्षण में हमने कृष्ण को याद नहीं किया। सबसे ज्यादा फायदा वो क्षण है इस जगत में, या कहीं भी हो जीव के लिए, जिस समय कृष्ण को आपने याद किया। मार्कंडेय का आपने सुना? मार्कंडेय पूरा उत्तान माल में मार्कंडेय ने भगवान से पूछा, अरे मुक्त एक्चुअली मुक्त जीव मार्कंडेय ने पूछा कि भगवान मुझे जरा भौतिक जगत दिखा दो, माया क्या है दिखा दो। तो भगवान में माया क्या है वो दिखाया भागवत में, तो पढ़ लीजिए कभी। तो बाद में बोलता है बस 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 बंद करो, मुझे अब देखना नहीं है। जैसे हॉरर मूवी है, शुरुआत में बच्चा क्या बोलता है, हॉरर मूवी सोचते ना, बच्चा क्या बोलता है, जाना 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 है। एक बार जाके जब बाहर रोते हुए आता है, मम्मी बोलती है बेटा जाना है वापस ये बहुत एक जगह एक बड़ा हॉरर मूवी के बराबर है। कब क्या होता है मालूम नहीं। हॉरर मूवी होता है ना, शांत रहते हैं, कोई साइलेंट म्यूजिक रहता है, अचानक से धाड़ देते कुछ आ रहा। कुछ ऐसे मूवीज बने थे जिसमें लोग देखते देखते मर गए थे। ये भौतिक जगत भी ऐसा ही है, इसे हॉरर मूवी। पदम पदम विपदम, कब क्या होता है, क्या कैसे होता है वो भी नहीं मालूम, कहां से ऊपर पड़ता है कुछ नहीं मालूम। भौतिक जगत ही हॉरर है, उसके अंदर हॉरर मूवी देखने के लिए जाएंगे।
तो फिर बहुत कंफ्यूजन है, ब्रह्म ज्योति के लिए कह दिया कि ब्रह्म ज्योति में आदमी निष्क्रिय रहता है इसलिए वो आ जाता है दोबारा, अभी वहां जाके भगवान की सेवा में लग जाता है, और अगर भगवान की सेवा जो प्रमुख हो जाएगा तो फिर आ जाएगा। मतलब वहां भगवान सेवा जरूरी नहीं कि भगवान सेवा मिलेगी
हम आए हैं इसका मतलब आ सकते आगे।
देखिए थियोरेटिकली सिद्धांत के हिसाब से आपको भौतिक जगत में आना मतलब क्या बताइए?
भगवान की प्रमुख हो सवाल,
भौतिक जगत में आना मतलब कृष्ण बहिर्मुख हो वो शुरुआत हो गया। बहिर्मुख मतलब नहीं देखना, खाली एक ऐसा एक झलक मात्र का, एक पलक मात्र का ऐसा हुआ तो आपको हॉरर मूवी दिखाई पड़ा पूरा, मरना ये वो ये क्या क्या चीज होता है, दिस इज कॉल्ड हॉरर। इसलिए भगवान के ट्रेनिंग एक्चुअली देख रहे कि ये मुझे भूले बिना अपना जीवन यापन कर दे कुछ समय के लिए, तब मैं लेके जाऊंगा। अच्छा प्रश्न, वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार वापस धाम में जाने के बाद, वापस धाम में जाना मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग? कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना। वापस धाम में जाने के बाद कृष्ण उनको ऐसा शिक्षा देते हैं, भौतिक जगत के डाल के मुझे भूलने का क्या परिणाम है देखो। एक बार वो शिक्षा ग्रहण करने का क्या जीव उधर वापस जाएगा, भूलेगा कृष्ण को? नहीं भूलेगा, है कि नहीं? तो थियोरिटिकली जनरली नहीं भूलता है, थ्योरी के हिसाब से अगर वो आना चाहता है तो जीव जो है वो चेतन है कि नहीं, उनका स्वेच्छा दिया कि नहीं भगवान ने? अगर जीव चाहता है मैं जाऊंगा फिर से देखना मूवी, थियोरिटिकली ऐसा होता नहीं है,
होता नहीं भगवान के साथ,
नहीं होता नहीं है जनरली। अगर चाहता है तो ये प्रश्न हमेशा रहेगा, चाहता है तो जरूर वो चांस हमेशा है, नहीं चाहेगा तो जबरदस्ती कर सकते भगवान हमारे ऊपर? कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती कर सकता है जीव के ऊपर? नहीं, भगवान हमारे एक चीज में दखलंदाज नहीं करते, वो क्या है? वो स्वतंत्रता। अब बोल देते दिया ही क्यों नहीं भगवान ने स्वतंत्रता को, दिया ही क्यों नहीं देता तो अच्छा था, क्योंकि वो दिए बिना हमारा जो प्रेम है वो प्रेम संबंध नहीं रहता। प्रेम संबंध तभी है जब स्वतंत्रता है। कैसे बोल सकते हैं ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है? अनेक वो लोग हैं उनको प्रेम करने के लिए, लेकिन उन सबको छोड़ के अगर आप बंदूक दिखा के अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे मैं तुमको मार दूंगा, उसको प्रेम बोला जा सकता है?
नहीं,
स्वतंत्रता है, कहीं जहां जा कहता इच्छसी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु में आए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आके कहे हरे कृष्ण जपो, भगवान का सेवा में लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, जब चित्त का दर्पण का मार्जन होगा तब। क्या चीज? हाँ जवाब दे दिया, यही है। भगवान की धाम में एक बार जाने के बाद जीव वापस नहीं आता,
जीव आना नहीं चाहता,
नहीं चाहता। अगर वो चाहता है, अगर वो चाहता है, वो रिमोट पॉसिबिलिटी है, होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहता है क्यों नहीं आ सकता?
आ सकता है, जैसे अभी आया है।
हाँ देखो ये आना भी क्या है मालूम है? आना भी गोलोक वृंदावन धाम में एक पलक के लिए भूलना कृष्ण को,
तो इस श्लोक का
यद गत्वा, जैसे तुम मेरे पास आओगे फिर वापस नहीं जाओगे।
जीव पे,
जीव खुद तुम नहीं जाओगे, एक बार मेरे पास है तुम नहीं चाहते हो बस, ये है। ये नहीं कि मैं उनको ऐसे पकड़ के रखूंगा, तुम जाना भी चाहते तो मैं नहीं जाने दूंगा। ऑलरेडी ऐसा ट्रेनिंग मिल जाता है बहुत ही जगत में, ये फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग जगत है, जगह है। फर्स्ट क्लास एक्चुअली ये ट्रेनिंग जगत है, भगवान की सेवा से विमुख रेस्पॉन्सिबल सेवा, जिम्मेदारी का सेवा स्वीकार करेंगे कभी ट्रेनिंग जगत के। नहीं आते स्वयं नहीं आते। है उधर भी है, वैकुंठ का वर्णन है भागवतम में, जिसके अंदर पति पत्नी बच्चे सब उसका वर्णन है, विमान है, प्लेन प्लेन में जाते हैं, घर है, बर्तन है, गैस है, चूल्हा है,
लॉन्ग ड्राइव, तो लॉन्ग वो विमान
में, हाँ विमान में सब है, जो हाईवे है। क्या चीज? हाँ ऑलमोस्ट होने वाला है वो, खत्म कर देंगे एक तरह एक बजे तक हो जाएगी। ज्यादा ये नहीं है, छोटा चैप्टर है, 20 श्लोक है। हाँ हाँ झाड़ू भी है सब है। ठीक है नेक्स्ट। हाँ नहीं नहीं बस कौन सा भी आठवा ना। शरीरम यद वाप्नोति यच्चादुत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वेदानि सम्याति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तब एक प्रश्न है कि जीव अभी इस भौतिक जगत में करता क्या है, व्हाट डज ही डू? ये करता है, क्या कर रहा है?
इस संसार में जीव अपनी ध्यात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है।
हाँ
इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है।
ईश्वर, इस श्लोक में जीव को ईश्वर कहा गया है। वो क्या कर रहा है? शरीरम यदम आपनोति यच्छा उत्क्रामत ईश्वर गृहीत्वेता संयाति वायुर्गंधा निवास। वायु गंध, वायु गंध को मान ले कि कहीं दूर में कहीं एक फूल है, वो फूल से सुगंध को वायु उधर से लेके आपके नासिका तक पहुंचाता है। उसी प्रकार ये जीव एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है, यानी 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है। इफ ही हैज मेड हिज कॉन्शियसनेस लाइक दैट ऑफ ए कैट और ए डॉग ही श्योर टू चेंज टू ए कैट्स और ए डॉग्स बॉडी। प्रभुपाद लिखते हैं इधर, अगर उस जीव के पास कोई कुत्ता या बिल्ली का चेतना है तो वो चेतना के अनुसार उनको अगला शरीर प्राप्त होता है। एंड इफ ही इज कृष्ण कॉन्शियस देन ही विल ट्रांसफर टू कृष्ण लोक। वन गेट्स डिफरेंट बॉडी अकॉर्डिंग टू कर्म एंड ही हैज टू क्विट दिस बॉडी इन ड्यू कोर्स एंड इज स्टेटेड हियर दैट द सटल बॉडी विच कैरीज अ कंसेप्शन द नेक्स्ट बॉडी। आप जैसे जैसे अपने कार्यों को करते रहते हो आपके जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर आगे जो जन्म आगे जो शरीर मिलने वाला ऐसे शरीर का रूप धारण करता है सूक्ष्म शरीर। और सटल बॉडी वी मेक इट नाउ इट सेल्फ, जैसे हमारा मन है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है, ये इसी जन्म में कार्य करते करते मृत्यु के समय हमारा सूक्ष्म शरीर का या चेतना का जो स्थिति है वो उस प्रकार होगा कि अगले जन्म में जो स्थूल शरीर मिलने वाला ऐसा उनको मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगले जन्म में वो कुत्ता बनेगा, सपोज कोई बहुत एकदम पापकारी करता है तो ऐसा नहीं कि अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, नहीं, अभी ही वो कुत्ता का शरीर जैसा या उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो कुत्ता को रूप धारण कर रहा है। हाँ जो लोग सेंस कंट्रोल्ड है, सेंस कंट्रोल इनका इंद्रिय बहुत संयमित है और इस विज्ञान में प्रवीण है, आपको देख के आपके शरीर को नहीं देखती, आपके सूक्ष्म शरीर को देखने का शक्ति उनके पास रहता है, देख के बता देती है ये ऐसा आदमी है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की चेतना है मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद जैसे जिस प्रकार की चेतना के अनुसार हम कार्य करेंगे उसी प्रकार हमारा मन बुद्धि अहंकार बनता है। तो जैसे मान लीजिए आपको भी लगता है, जैसे आप जप करते हो थोड़ा सा शुद्ध जीवन को पालन कर रहे हो, मान लो कहीं जाएंगे कोई मार्केट में, कोई बहुत एकदम नीच चेतना के कोई व्यक्ति आया तो आपको अच्छा है, तो उसके साथ रहना भी अच्छा है, साथ में चलना हो, उसके अंदर बदबू कुछ नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी लगता नहीं आपको साथ, क्यों? उनका सूक्ष्म शरीर, उनका जो प्रभाव है, उनका वो, उनका ये ऑरा है, ओजस है, उससे पता लग जाता है कि इस प्रकार का जानवर है। तो वी आर मेकिंग अवर सटल बॉडी नाउ इटसेल्फ, अभी हम तैयार कर रहे हैं। हाँ, ये जिंदगी में जो किया है मनुष्य जीवन में उसके अनुसार उनका अगला शरीर मिल जाएगा, यानी उसका शरीर की तैयारी अभी हो रहा है और हमारा सूक्ष्म शरीर से परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से। अंत काले च मामेव स्मरम, भगवान की स्मरण में इतना शक्ति है कि ये आपको इतना परिशुद्ध कर सकता है। होगा अगर मान लो कि कोई विशेष पद का कृपा हो गया तो अलग बात है, लेकिन ऐसे स्मरण ऐसे नहीं हो जाता, होगा भी नहीं, हो गया तो भी भगवान के नाम में इतना शक्ति है, वो किसी प्रकार का दूषित भी चेतना हो एक बार सब क्लियर,
वो सुप्रीम हो गया,
वो सुप्रीम हो गया। देखिए भगवान ने ऐसा नहीं कहा हजारों में एक ही आएगा, एक ही पास होगा, नहीं, ऐसा उनका एक्सपीरियंस है, भगवान का एक्सपीरियंस है, मतलब इन द सेंस भगवद गीता भागवत बहुत है, लेकिन मान लो कि जेल में हजारों लोग हैं, चोरी मत करो, ये मत करो, अच्छा रहो, ये उपदेश कितने लोग सुनेंगे जेल में? शायद कुछ ही लोग सुनेंगे, है कि नहीं? उस हिसाब से ऐसा नहीं कि मैं केवल कुछ ही लोगों को चुनूंगा, नहीं, भगवान ने सबको मौका दिया है, लेकिन जनरल अनुभव ऐसा है, विचार करके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है, समझ रहे ना? एक बहाना नहीं है, हजारों में एक होता है, अभी क्या एक नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, शादी से बैठ जाओ, प्रचारकों को निरुत्साह करने वाला श्लोक है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हजारों में एक, ठीक है भक्त बन गया ना, कितने बने, ठीक है 10 बने ना, तो कितना है आपके शहर में? 10 लाख, 10 लाख में 10 है नहीं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे एक भक्त ने ऐसा बात किया तो मैंने कहा कि आप क्या गौड़ी मठ में जा रहे हैं क्या? उधर थोड़ा प्रचार को ज्यादा जोर नहीं देते। उसने कहा हाँ, रिकॉर्ड मत करना है सब चीजें, निकाल दीजिए इसको। तो उन कुछ लोगों का ऐसा है, ये बहुत सारे ऐसे मिलते हैं कभी कभी, उसने आके मुझे कहा, एक वक्त ने आके कहा कि मेरे को आपको भजन करना चाहिए, पहले खुद का उद्धार करो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि भारत भूमि तो जन्म हुए तो जार जन्म सार्थक खड़ी बाद परोपकार, पहले आप जन्म सार्थक करो। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया? हो रहा है, फिर मुझे क्यों प्रचार कर रहे हो आप? हाँ अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। आप जो प्रचार करते हो, आप प्रचार करते हो, आप नहीं करते। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आए, प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आए, कुछ कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, क्या बात कर रहे थे? हाँ, प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आए, भक्त आके प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी मैं जब पूजा करता हूं तो बहुत अपराध होता है, सेवा अपराध होता है। तो प्रभुपाद जी, तुमको कौन बोला पूजा करने के लिए? तो घबराया, प्रभुपाद जी आपने तो बोला पूजा करने के लिए। प्रभुपाद जी कहा कि, उन्होंने कहा कि तो मैं नहीं करूं क्या? तो प्रभुपाद ने कहा करो, तो आपने बोला अभी मत करो, मैंने कहा तुम मत करो, तो कंफ्यूज हो गए। तो प्रभुपाद जी का कहा कि प्रभुपाद जी प्लीज टेल मी वन थिंग। तो प्रभुपाद ने कहा तुम करो, कैसे करो? मेरे कहने के ऊपर करो, ऑन माई बिहाफ यू डू इट। जैसे हम प्रचार करते हैं, ये मेरी गुरु की आज्ञा से मैं कर रहा हूं करके सोचना चाहिए हर वक्त। इट इज अ इंस्ट्रक्शन ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, और उनकी प्रतिनिधि होते हुए मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, इट इज नॉट मी। खुद का उद्धार नहीं कर सकता हूं, दूसरों का क्या उद्धार करूंगा मैं? नो, इट इज माई स्पिरिचुअल मास्टर हु डिलीवर्स। इसलिए मैं क्या करता हूं, उनकी आदेश के अनुसार मैं बद्ध जीवों को उनका संदेश पहुंचा, एक पोस्टमैन मात्र हूं, और उसके लिए बहुत युक्ति लगाऊंगा, बहुत प्रयास करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली इसे सेल्समैन होता है। सेल्समैन क्या करता है? जो है वो वस्तु है उसको, उसको नए, उसको वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता कोई चीज को, खुद लेके जाता है, सेल्स करके आ जाता है बस। और वो जो पैसा देते वो लोग, वो किसको देता है? कंपनी को देता है, उसके लिए वो कंपनी उनको जो सुविधा चाहिए वो दे देती है, बस हो गया। इतना था, ये चित्र होना चाहिए। गुरुर आज्ञया, आप हवन में बैठे हो कभी? कोई वैष्णव दीक्षा भी होता है? हाँ भाई, इसमें भी जो दीक्षा के टाइम में जब बैठते हो उस समय भी ये मंत्र उच्चारण किया जाता है। मैं ये कार्य कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं? गुरु की आज्ञा से कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस। इसलिए उनको बोला, जो हवन में बैठते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऋत्विक बोला जाता है, मतलब जो गुरु का प्रतिनिधित्व करता है उसको ऋत्विक बोला जाता है। गुरुर आज्ञा, ऑन द ऑर्डर ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, एंड ये चेतना होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। स्पर्शनम च रसनम ज्ञानमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। और फर्दर एक्सप्लेन कर रहे, जब जी रहा है जीव, तब क्या करता है? यानी दूसरे शरीर में जाने के बाद करता क्या? वो
दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीव, नाक तथा स्पर्श, इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सुपुंजित है।
हाँ,
इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है।
हाँ, अनुवाद पढ़िए इसका।
दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वो भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगत के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावना में है, अतः जब कोई कृष्ण भावना में स्थित होता है तो वो शुद्धता जीवन बिताता है, न
लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। ये आवश्यक नहीं कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। कुत्ता, बिल्ली, सुकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है।
तो जीव की तीन अवस्था है, एक है शरीर में प्रवेश करना, शरीर के अंदर जीना और शरीर से निकलना। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानाम वा गुणान्विताम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। पश्यन्ति देखता है, कौन देख सकता है? ज्ञान चक्षुषा, जिसका ज्ञान का चक्षु है वही देख सकता है। कौन नहीं देख सकता है? विमूढ़ा, जो मूर्ख है विशेष रूपेण मूढ़ा, वो देख नहीं सकता। किस चीज को देख नहीं सकता? उत्क्रामंतम मतलब क्या है? किस प्रकार जीव वो शरीर छोड़ रहा है? स्थितम किस प्रकार जीव शरीर के अंदर निवास है? वा अपि अथवा मतलब क्या है? बुंजानाम वा गुणान्विताम, बुंजानाम वा गुणान्विताम। द फुलिश कैन अंडरस्टैंड लिविंग एनिटी क्विट्स हिज बॉडी अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉडी ही एंजॉयज अंडर द स्पेल्स ऑफ मेटीरियल नेचर। और गुणान्विताम, गुणों के प्रभाव की वजह से उनको कैसा शरीर मिल रहा है या मिलने वाला है, यानी कौन से शरीर में प्रवेश कर रहा है। ये तीन चीज। उत्क्रामंतम मतलब शरीर छोड़ना और स्थितम मतलब शरीर के अंदर निवास करना और मुंजानाम व गुणान्विताम
मतलब भोग करते।
हाँ, ये शरीर में रहते हुए भोग करता है। भोग करते हुए उसको क्या प्राप्त होता है? अगले जन्म में दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो ये दूसरा शरीर प्राप्त होना, इस शरीर को छोड़ना और तीसरी अवस्था क्या है? इस शरीर के अंतर्गत रहना। ये तीन अवस्थाओं को जीव कर रहा है ये बात नहीं जान सकता। ज्ञान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, केवल ज्ञान ज्ञान चक्षु जिसके पास है वही जान सकता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्ञान चक्षु इस श्लोक में बहुत ही महत्व है। आगे पढ़िए।
ज्ञान चक्षु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही वो ये अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु के से भगवदगीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वो भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वो इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मुक्त बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार के से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतः जो लोग कृष्ण भावना में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए।
यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो कृतात्मानो नैनम् पश्यन्त चेतसः। तो उसी बात को आगे लिखते हैं। जो यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्यात्मन्यवस्थितम्, ये कौन लोग जो देख सकते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। पहला शरीर त्यागता, त्यागने के बाद जिस तरीके से स्थित उस शरीर में स्थित था पहले, हाँ वो शरीर में जैसे स्थित था, वो स्थित होकर क्या कर रहा था, वो गुणान्विताम गुणों को खा रहा था, कारणम गुणसंगस्य सदसद्योनि जन्मशु, जिस प्रकार वो गुणों को वो खा रहा था, मैंने गुणों के साथ संगति कर रहा था, उस हिसाब से उसको अगला शरीर प्राप्त होगा। नहीं, अभी उत्क्रामंतम शरीर से निकला, यानी जो अज्ञानी है वो ये देख नहीं पा रहा है जीव शरीर से निकल रहा है, और दूसरा चीज क्या देख नहीं पा रहे, वो दूसरा शरीर में जा रहा है, ये चीज को देख नहीं पा रहे। तीसरा चीज क्या देख नहीं पा रहा, दूसरा शरीर जो मिल रहा है वो किस हिसाब से मिल रहा है, उसको पहले शरीर में रहते हुए किस जिस प्रकार के गुणों के साथ संगति किया, जिस प्रकार के गुणों के साथ उसी के अनुसार मिलेगा उसका अगला शरीर, वो चीज को देख नहीं पा रहा। हाँ पहले वाला श्लोक, पहले वाला शरीर में जो भोग किया उसके हिसाब से, अभी आगे वाले शरीर में थोड़ी ना, पहले वाले शरीर में जो भोग किया उसके हिसाब से उसको अगला शरीर प्राप्त हो। ये तीन चीज है, ये थ्री थिंग्स कमेंट करते हैं कि जो मूर्ख है वो तीन चीजों को जान नहीं सकता, एक है शरीर छोड़ रहा है, दूसरा उसको दूसरा शरीर मिल रहा है, तीसरा जो दूसरा शरीर मिल रहा है वो किसके आधारित होकर मिल रहा है, कर्मों का जिस प्रकार से किया है, जो कर्म किया है, जो जो इस प्रकार किया है, वही भरत महाराज का उदाहरण जो है ना वो एकदम एक्सट्रीम उदाहरण है, वो हर व्यक्ति के लिए अप्लाई नहीं होता है। वो भरत महाराज का उदाहरण भागवत में इसलिए दिया गया ताकि ये बताने के लिए कितना भी आप बड़े चढ़े उन्नत भक्त भी क्यों ना हो, कितना ही बड़े भी क्यों ना हो, क्या होता है, अगर आप भक्तों का संग नहीं करोगे निश्चित रूप में आप गिर जाओगे। हाँ वहां जाने के बाद भी नहीं, गोलोक धाम आप तभी जा सकते हो जब 100% शुद्ध हो गए, एक भी थोड़ा सा भी ऐसा है कलमश तो नहीं जा सकते। 16 माला जप करने से, 16 माला क्या, 16 माला में एक मंत्र, एक मंत्र क्या उसके अंदर कृष्णा, वो शुद्ध नाम प्रेम के स्तर में एक बार काफी है, वंस इज एनफ। हम लोग 16 माला या बाकी टाइम सेवा इसलिए बोले अभी साधना की अवस्था में, ये करते करते राग उत्पन्न होगा, भाव उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। प्रभुपा जी ने भी कहा है कि एक बार कोई भक्त ने कहा प्रभुपा जी ऐसा हुआ है मंदिर में भक्त चला गया, तो प्रभुपा जी ने कहा हंसते हुए टू बी वैष्णव इज नॉट वेरी इजी, वैष्णव बन के रहना उतना आसान नहीं है, आसान है सरल है लेकिन हम इसको मुश्किल बना के रखे, उसको जैसे कोई धागा है, ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था एक बार, एक धागा है एकदम अच्छा सा धागा इतना, अगर उस धागे को ऐसा रख के ऐसे 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 करोगे पूरा, बाद उसको निकालने के प्रयास करो, सीधा करने के प्रयास करो, क्या करोगे, तो बहुत मुश्किल है, नहीं नहीं बहुत मुश्किल बनाया तुमने, उसको अच्छी तरह से रोल करके रखता तो अपने आप धागा अच्छी तरह निकल जाता। उसको देखभाल नहीं किया, उसको ऐसे कचरे जैसा फेंका, उसके अंदर गोंद गिर पड़ा, सब कुछ कैसे कचरा जैसा हो गया ये, और उसको सीधा करने जाएगा तो मुश्किल लगेगा। ऐसा ही हमारी स्थिति है। हाँ नहीं नहीं मैं कहीं और लेक्चर
उसमें
गुड एग्जाम्पल। कौन माता जी? हाँ
तो मैंने उनको कहा था कि माता जी मैं तो भक्त नहीं बन सकती, मुझे की क्वालिटी सुन के लेना, तो फिर कहा नहीं जो एक बार भी भगवान का नाम दे देना वो हम कर देना, मतलब वैष्णव मंदिर, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु का उदाहरण दिया कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो कोई हरि भक्त एक बार नाम ले लेगा वो वैष्णव समझो। ये बात को मैं खंडन कर रही हूँ, इसके पीछे का कारण की लॉजिक है, क्योंकि बात सोचो आप एक बार महाप्रभु ने जो लाइटिंग यूज की है, एक बार जो परमात्मा नाम ले लेगा वो दोबारा मतलब वैष्णव बन जाएगा वो, तो अब ये वैष्णव एक शब्द का जो है हम क्या करते हैं सिंपल लाइनिंग में लेते हैं कि भाई इसने हरि नाम ले लिया वैष्णव बन गया, उसने हरि नाम ले लिया वैष्णव, नहीं महाप्रभु ने ये कहने का तरीका महाप्रभु का नहीं।
अच्छा मैं तो बोलूं
महाप्रभु का तरीका कैसा है बोलने का,
वेरी गुड। अच्छा आपने ये प्रश्न उठाया तो उसका जवाब देता हूं। महाप्रभु से तीन लोगों ने अलग अलग समय तीन बार प्रश्न पूछा था वैष्णव कौन है। पहली बार व्यक्ति ने पूछा तो महाप्रभु ने कहा जो भी एक बार कृष्ण का नाम लेता वैष्णव है। बाद में महाप्रभु से पूछा कि जो वैष्णव कौन है, उन्होंने कहा कि असत संग त्यागे से वैष्णव अच्छा है, असत संग क्या त्याग करता हूं वैष्णव। तीसरी बार जब पूछा तो जिस बोला कि जिनको भगवान का नाम लेने से आंखों से आंसू आता है, जिनको देखने से भगवान याद आते हैं वो वैष्णव। तो इसके ऊपर आधारित होकर आचार्य ने कहा कि ये तीनों वैष्णव के स्तर है। पहले स्तर में वो भी वैष्णव है लेकिन कौन से, कनिष्ठ वैष्णव है, बीच में जो है मध्यम और उत्तम। जब आप दूसरों को देखते हो भले वो कोई भी क्यों ना कृष्ण का नाम लेता, हमको उनको वैष्णव के रूप में देखना चाहिए। जब अपने आप की बारी आती है तो ये देखना चाहिए कि मैं कितना कितना वैष्णव, जब करता आंखों में आंसू आता है नहीं, इसलिए मैं वैष्णव नहीं हूं। तो मेरे लिए स्केल क्या है, तीसरा डेफिनेशन। दूसरों के लिए जब बारी आता है तो उनका क्या मापदंड है, ठीक है क्लियर। जब आप देखना चाहते हो कि ये भक्त कितना अच्छा वैष्णव है, उसके लिए कौन सा डेफिनेशन यूज करोगे, अभी सोच ही बताइए। भगवान का नाम जब कर रहा है तो ये जब अपने आप को देखते हो मैं कितना अच्छा वैष्णव हूं, तब आप क्या क्या कौन सा डेफिनेशन वापरोगे। तीसरा यूज करोगे, तीसरा मतलब कितना कृष्ण को जो प्रेम उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ऐसा करोगे तो अपराध नहीं करेंगे। जब अपनी बारी आती है तो पहला डेफिनेशन, जब दूसरों की बारी आती है तो जब आपको देखना चाहिए ये इनका मैं संगति कर सकता हूं कि नहीं, इनको प्रणाम करूं कि नहीं, तब मध्यम। जो भी है आप लोगों ने कहा वैष्णव, क्योंकि ये जो है एक बार कृष्ण का नाम लेने से कृष्ण सोचते हैं कि वैष्णव है, मेरा हो गया, मेरा नाम लिया तो मेरा हो गया ना, इतना हद तक कि जो पी के मंदिर में आके वो बस ऐसे गिर जाता है, भगवान सोचते इसके प्रणाम किया। रास्ते में कोई भी जा रहा है मंदिर के सामने रोड से, भगवान सोचते हैं कि ये अभी आने वाला है मेरे मंदिर, मेरे पास भले आए ना आए वो आज सोचते हैं ऐसा। ठीक आगे चलिए, यतंतो योगि नष्टेनम पश्चिन्यात्मनो स्थितम यतंतो कृतात्मानो नैनम पश्चिन अथेतसः। दो प्रकार के लोग हैं, योगी लोग जो प्रयास करते रहते ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, वो लोग देख सकते हैं इन सब बातों को। जो लोग जो अचेतसः जिसकी चेतना नहीं है, वो लोग इस बात को सोच विचार नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इदादित्यगतम तेजो जगद्भाषेत किलम यच्चंद्रमसी चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। अभी भगवान 12, 13, 14, 15 ये श्लोकों में अपनी महिमा को वर्णन करते हैं, अपना विभूतियों का। फिर वापस जस्ट टॉकिंग अबाउट इज विभूतिस 12, 13, 14, 15। विभूति भौतिक जगत, अभी आध्यात्मिक जगत का वर्णन किया हमने, न तद भाषे दो सीरियो, अभी इन चीजों में अपना विभूतियों का अनुवाद पढ़िए इन सबका।
सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है।
ठीक है, नेक्स्ट,
भूतानि
धारयामहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकः।
मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ।
चंद्रमा से ही सारे वनस्पतियों में रस प्राप्त होता है, टेस्ट इन वेजिटेबल्स। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्यं चतुर्विधाम्।
मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वान अग्नि और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ।
केवल भगवान पेट में ही नहीं, ये भी कहते हैं कि पेट में ही नहीं हूँ मैं वैश्वान के रूप में, सबके हृदय में भी हूँ। चलो आगे, सर्वस्य चाहम् इति सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। तो भगवान अपनी विभूतियों को कहते हैं मैं किस प्रकार इस भौतिक जगत में हूं और कैसे मैं सबको धारण कर रहा हूं। सबसे पहला ये कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा का जो ज्योति है जिसके द्वारा सारा जगत का पालन हो रहा है वो मुझसे उत्पन्न होता है, बाद में हर चीज का धारण मैं ही करता हूं, इतना हद तक कि सब लोगों के पेट के अंदर जाके जो अन्न मैंने उत्पन्न किया है, जो सब्जियां उत्पन्न किया है चंद्रमा की रस प्रदान करते हुए, उसको हजम करने वाला मैं ही हूं। और इतना ही नहीं, पूरा ये हजम करने के बाद पूरा ये शक्ति को जो उत्पन्न हुआ है हजम करने से, वो पूरा शरीर जिस प्रकार चल रहा है वो सब केवल मेरी वजह से ही चल रहा है, क्योंकि मैं सबके हृदय में बैठा हूं। और अहम सर्वस्य चा हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानापोहनम च, केवल सबके हृदय में ही नहीं, सब लोगों का जो स्मृति है, ज्ञान है, अपोहन है, ये तीनों मुझसे उत्पन्न होता है। और अंततः वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सारे वेदों को जानने वाला मैं हूं। और
संदेह
हृदय में वेदांत का संतुलन रखता,
सारे वेदों को का रचयिता भी मैं हूं, वेदांत का रचयिता मैं हूं, और सारे वेदों को जानने के बाद किसको जाना जाता है, वो मुझको ही जाना जाता है। तीन बात है, थ्री थिंग्स। ठीक है, परपोट बहुत अच्छा परपोट है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके लिए बाद में पढ़ लीजिए, उसके अंदर बहुत सारी चीजें चर्चा कर लिया, वेदांत क्या है, वेद क्या है, वो सब चीजें। हाँ ठीक है,
इसमें प्रश्न भी
है, ठीक है पढ़िए।
परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है।
जब आपसे पूछा जाता है प्रश्न, पिछले जन्म था तो पिछले जन्म की बातें अभी क्यों याद नहीं है, उसका क्या जवाब देंगे आप?
विस्मृति की।
और बोलते कुछ लोगों की याद रहता है ना, कुछ है ना, हम लोग बोलते हैं ना पिछले जन्म की यादें, ठीक है वो अलग बात है। बहुत सारे चीज इस जन्म में किया वो भी याद नहीं है आपको,
अभी चाबी इस जेब में रखी, इस जेब में रखी, याद ही नहीं।
सही बात, सही बात। पिछले जन्म की क्या कहना, आज सुबह क्या किया वो भी याद नहीं है, कल क्लास में क्या बोला था वो भी याद नहीं है, है कि नहीं? हाँ यही होता है, इसके लिए क्या जवाब देंगे ध्यान से सुनिए, बहुत पॉपुलर सवाल आएगा ये। जब कोई बच्चा एग्जाम के लिए पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करता है, अच्छी तरीके से उसको क्वेश्चन का आंसर मालूम है, अगला दिन स्कूल में गया तो क्वेश्चन पेपर मिला तो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन को आता है उसका आंसर लिखना शुरू कर दिया, करते 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 लिखना एक जगह भूल जाता है, एक लाइन कर रहा है थोड़ा सा पीछे थोड़ा लंबा सांस फिर याद किया लिख दिया। अभी ये जब बच्चा जब भूल गया था वो सेंटेंस, भूल गया था वो हाँ? क्या हो गया था उसको? इसका इनका जो स्मरण है, मेमोरी है, वो उसके प्रति वो अचेत हुआ, ही बिकेम अनकॉन्शियस ऑफ हिज मेमोरी। वो था लेकिन उनको चेतना जो है का उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, तो बिकेम अनकॉन्शियस। जब याद आया तो उसको याद आया, कहीं और से टपका हो, अंदर ही था, लेकिन वो क्या हुआ वो टाइम में, ही बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज मेमोरी। वो तो फॉरगेटफुलनेस मतलब, विस्मृति मतलब क्या है, हमारी मन में जो जितने ही बातें हमारी याददाश्त है, याददाश्त अच्छा शब्द है, याददाश्त के प्रति हम अच्छेत हो जाते हैं तो उसको विस्मृति बोला जाता है, याददाश्त के प्रति हम सचेत हो जाते हैं तो उसको स्मृति बोला जाता है। समझ आया? भगवान का यही रोल है कि नत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। हाँ, ये जो स्मृति और ज्ञान ये सब भगवान अपने हृदय में बैठ के जो हमारे लिए हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो जरूरी ज्ञान है वो ही ज्ञान प्रकाशित करते हैं, बाकी चीजों को विस्मृत कर देते हैं। जैसे बद्ध जीव है, भौतिकवादी व्यक्ति है, उसका इच्छा क्या है? मैं भोगना चाहता हूं। अगर वो टाइम में उसको याद आया मैं पिछले जन्म में कैसे मरा था, तो वो भोग सकता है? नहीं भोग सकता। एक व्यक्ति का बहुत इच्छा हुआ मुझे ये स्त्री के साथ विवाह करना है, तब उसको स्मरण होता कि यही स्त्री पिछले जन्म में उनका मित्र था और उनको मार दिया था क्या उसे शादी करेगा? अगर आपको स्मरण होता जितना भी लोग आपके बारे में बुराई किया है वो सारे बातें आपको याद है, अभी शांति से एक लोटा पानी पी सकते हो आप?
नहीं।
भगवान का एक स्वभाव है कि यो विदधाति कामान, सारे लोगों की कामनाओं को वो पूर्ण करने वाले। तो जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सहयोग बातें हैं उसी चीजों को वो इसका मतलब यही है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं ये भूल गया, इसका मतलब क्या है? उसके प्रति या इच्छा नहीं है, इतना इंटेंस डिजायर नहीं है। डिजायर होता तो निश्चित रूप में हमको याददाश्त में एकदम बराबर बैठ जाता।
तो एक चीज याद थी और उसको चाहिए, उसकी डिजायर भी, उसको एग्जाम में लिखना और वो भूल गया और फिर याद आ गई,
तो इसका मतलब है वो एग्जाम से उसको और अच्छा डिजायर है, कोई बढ़कर है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, परमात्मा सबके उदय बैठे, इज दैट एवरीबडी साथ, उसको जीव की इच्छा के अनुसार उनको स्मृति ज्ञान अपोहन तीन चीज देते, स्मृति विस्मृति और ज्ञान।
लेकिन ऐसे जो है कभी इच्छा है लेकिन वो अपना याद नहीं कर पाता,
वो इसीलिए क्योंकि उनकी चेतना कहीं और है पक्का, चेतना कहीं और लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? कोई और चीज उसको पसंद है या डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ कर रहा है। अभी भी कन्विंस नहीं है। अभी एक एक ध्यान से सुनिएगा, मैं एक चीज को इसलिए भूल जाता हूं क्योंकि मुझे कोई और चीज इससे ज्यादा पसंद है, लगा और किसी और के प्रति ज्यादा है।
अगर हम आंसर लिख रहे हैं एग्जाम में, याद कर रहे हैं,
हाँ हाँ हाँ, अभी वाह वाह,
लगा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, उस समय कोई चीज ध्यान नहीं आपको और कहीं कैसे दूसरी चीज की याद कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा है,
ये हम कह रहे हैं।
आपने जब याद किया था ठीक है वो टाइम में, से फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं, उसको फिल्म के इतने गाने याद रहते हैं, एक बार देखने से एक बार सुनने से वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के फॉर्मूला क्यों नहीं याद रहते? क्यों? वही कारण है, सेम, मेमोरी इज बेस्ड ऑन योर लाइकिंग।
ऐसे कैसे
हाँ यही तो बता रहा हूं, उस समय उसको वो चीज क्यों नहीं याद आ रहा है, क्योंकि उनके मन में ऐसे इंप्रेशंस भरे हुए हैं जो चीज वो याद आ रहा है।
लेकिन उस समय उस मॉडल को वो याद करने की कोशिश कर रहा है।
इससे पता लगता है हमारा कंडीशनिंग कितना है, हमारे मन में हजारों लाखों करोड़ों जन्मों का संस्कार कैसे भरे पड़े हुए देखते हैं।
तो मतलब हमारे कर्मों में हमारे इंप्रेशन के अनुसार,
हाँ वही इंप्रेशन मतलब क्या है, मैंने कर्म किया कि अपनी इच्छा से किया ना, वो एक प्रश्न है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जितना श्रद्धा से बाहर कर्मी लोग नौकरी करते हैं, उतना श्रद्धा से इधर भगवान का सेवा किए करे तो यही तो है,
यही तो है। भागवत में बात इतनी सुंदर खुद अपने बारे में,
ये सबकी सबका कारण है, सबका बात यही है। अभी आप एक ध्यान सुनो, ये मैं खुद अनुभव किया, आई जस्ट एक्सपीरियंस बाय माई सेल्फ, कि जब मुझे एग्जाम देना होता था 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम, रात को नींद नहीं आता, लेकिन अगला दिन भागवतम क्लास देना है, शांति आधा घंटा पंद्रह घंटा पहले देख लेंगे ना क्या है, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए कर देंगे, थोड़ा सा दो तीन पॉइंट नोट करके, इट इज ट्रू। अभी भी याद है 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम, वो टाइम में एंट्रेंस एग्जाम वो टाइम चलता है ना, 24 घंटा रात को दिन भर सपनों में फार्मूला दिखाई पड़ते थे, फिजिक्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो चीज अभी क्यों नहीं हो रहा है, सपना हरे कृष्ण महामंत्र क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, श्लोक क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग, वो टाइम में वो इंटेंसिटी तक थी, वो था ध्रुव महाराज, इतना इच्छा था मैं भगवान का गुणगान करूं करूं करूं, लेकिन उनको हो नहीं रहा था, बच्चा था ना, तो भगवान ने काली सेंस शंख का स्पर्श किया, बाद में कितना स्तुतियां किए बताओ, जब इधर आते हो मेजर कारण स्मरण नहीं होने का मालूम है क्यों, क्या है, मेरे बारे में दूसरे लोग क्या सोचते होंगे, आपका लगाव किससे है, मैं कुछ ऐसा अच्छा करूं ताकि लोगों को मैं इंप्रेस करूं, सबकी यही है, ये आच्छादित कर देता है हमारे ज्ञान को। आवृत्तम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौंतेय, चितात्मना प्रशांत आपका, आपके आत्मा के ऊपर मन के ऊपर नियंत्रण है, इंद्रियों का नियंत्रण है, परमात्मा समाहित, परमात्मा को देखते हो, परमात्मा आपको स्मरण देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे, बोलते जाएंगे गो ऑन। ये यादाश्त के ऊपर बहुत लोगों ने रिसर्च किया, लेकिन ये मत्था स्मृति ज्ञान अपोहनम चाहिए, परफेक्ट श्लोक है, हर चीज के बारे में भगवान किसके ऊपर आधारित होकर आपको स्मृति प्रदान करते हैं, हमारा डिजायर क्या है, व्हाट इज आवर इंटरनल डिजायर, दैट इज व्हाई आवर डिजायर शुड बी सो प्योर। कल इंग्लिश क्लास में इसी का चर्चा किया था कि मान लो किसी का ऐसा इच्छा है, मैं भगवान के लिए ये करूं वो करूं, क्या ऐसा कोई इच्छा है, हे भगवान मेरा भौतिक परिस्थिति को परिवर्तन करो ताकि मैं आपका अच्छा सेवा कर सकता हूं, ये भी भौतिक इच्छा है, लेकिन वह भक्त कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर भगवान आप चाहे तो एक ही चीज, एट इज द डिजायर इज शुड बी प्योर कृष्णा विलिंग। अगर आप चाहे तो, यदि आप चाहे तो, प्रभुपाद ने हमेशा जोड़ा, द डिजायर शुड बी वेरी प्योर, प्योर स्पिरिचुअल डिजायर, स्पिरिचुअल मेमोरी विल बी प्योर, अत्तस्मृति ज्ञान फोन। सोलह सत्रह अठारह ये तीनों साथ में पढ़ेंगे। द्वायमो पुरुषो लोके क्षराक्षरे वच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षरोच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मोदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वरः स्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तम। द्वायमो पुरुषो लोके, दो प्रकार के पुरुष है, कौन है वो लोग? क्षरा और अक्षरा। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्चते, यानी कुछ लोग जो है, कुछ क्षर, कुछ जीव जिसको क्या बोला गया है क्षर, वो कहां है? भौतिक जगत में है। और कुछ जीव है जो अक्षर है वो कहां है? ठीक है, क्लियर। दो प्रकार के जीव है, एक क्षर, वो कहां है? भौतिक। क्यों? क्षरा, वो शब्द से ही मालूम पड़ता है, क्षरा मतलब पतित, अक्षरा। बाद में उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर उत्तम पुरुषस्त्वन्य। और एक, ये दोनों के अन्य और एक पुरुष है, कौन है वो? परमात्मा। और यही पुरुष कहां है? लोकत्रयम आविश्य, तीनों लोकों में व्याप्त है। यानी ये श्लोक में परमात्मा और ब्रह्म का ज्ञान दिया है। ये उनका नाम नहीं है, भगवान का नाम वाला अच्युत नहीं है। ये जो जीव च्युत नहीं हुए, नहीं हुए उनका वर्णन है, यानी जो आध्यात्मिक जगत में रहने वाला जीव है। हाँ, इसलिए द्वामिमो पुरुषो लोके, दो प्रकार के पुरुष है, कौन है वो? क्षरा और अक्षरा। ठीक है, हाँ, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त, वेरी गुड, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। अक्षर मतलब क्या है? नाश नहीं होने वाला है। तो इस भौतिक जगत में ऐसा कोई जीव है जो नाश नहीं होने वाला है? नहीं, सभी का नाश हो रहा है। अभी तो शरीर बद्ध अवस्था में हमारा नाश होता है कि नहीं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, भले वो शरीर की अलग बात है, लेकिन हमको क्या अनुभव हो रहा है जब शरीर जाता है, मरता है, तो क्या बोले? मैं मरता हूं, ऐसे बोलते हो ना, तो वो अक्षरा। और दूसरा क्या है? अक्षरा। दो प्रकार का जीव है, द्वायमो पुरुषो लोके, एक अक्षर दूसरा अक्षर। ठीक है, अगर आप ये अक्षर को परमात्मा मानोगे, से फॉर एग्जाम्पल अगले श्लोक में क्या कहा है? हाँ, अन्य और एक पुरुष है जो परमात्मा कहा जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले वाले श्लोक में इतना तो है, ठीक है, ठीक है। उत्तम पुरुषस्तन्य है परमात्मा उदाहरता, ये परमात्मा है। लोकत्रय आविश्य विभर्ति अवे ईश्वर अल्लाह। और अठवें श्लोक में क्या कह रहे भगवान अपने बारे में, क्या है खुद क्या कहते हैं? यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तमा, मैं दोनों से परे हूं। किन से? क्षर और अक्षर, ये दोनों से परे हूं। यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तमा अथः अस्मि, इसलिए लोके वेदे च, कुछ शास्त्रों में, कुछ टीकाओं में लोके का अनुवाद पुराण करके किया गया है, पुराणों में और वेदों में प्रतीतः पुरुषोत्तमा, मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है, ये भगवान। इसका अनुवाद पढ़िए।
शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है।
द सुपर सोल कमिंग आउट ऑफ द बॉडी एंटर द इंपर्सनल ब्रह्म ज्योति, देन हिज फॉर्म, इन हिज फॉर्म ही रिमेन्स इन स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, दैट सुप्रीम इज कॉल्ड सुप्रीम पर्सनैलिटी। दिस मीन्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी एग्जिबिटिंग एंड डिफ्यूजिंग स्पिरिचुअल एफ्यूजेंस which is ultimate illumination. That supreme personality also has localized aspect as Paramatma. ये जो परमात्मा है ये ब्रह्म ज्योति से परे की अवस्था है। इस बात को स्थापना करने के लिए प्रभुपाद जी इस चीज को कोट करते हैं। इसे 17 श्लोक में आपको परमात्मा और ब्रह्म का ज्ञान मिला और 18 श्लोक में यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि च उत्तमा, क्षर और अक्षर दोनों से मैं परे हूं, श्रेष्ठ हूं। अथोस्मि, इसलिए लोके वेदे च, ये सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे तात्पर्य में, उसके अंदर लोके शब्द का अनुवाद करते प्रभुपाद जी। द वर्ड लोके सिग्निफाइज पढ़िए कौन सा जगह है।
शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है, तो आत्मा में परम पुरुष बताया गया है। परमात्मा
को ही द सुप्रीम इज कॉल्ड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सुप्रीम
से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार होता है,
ये जो है द सुप्रीम कमिंग आउट ऑफ द बॉडी एंटर्स इंपर्सनल ब्रह्म ज्योति। वो बात है, तावत् एष संप्रसादो स्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूपम संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। तो जी इसका बताइए क्या ये परमात्मा है क्या है? परमात्मा कमिंग आउट ऑफ द बॉडी एंटर्स द इंपर्सनल ब्रह्म ज्योति। हाँ, ये बॉडी जो है शरीर है भगवान का शरीर अगर समझेंगे तो फिर भी देन इन हिज फॉर्म रिमेन्स ही रिमेन्स इन हिज स्पिरिचुअल आइडेंटिटी द सुप्रीम इज कॉल्ड सुप्रीम पर्सनैलिटी। रिसर्च वाली बात है। इसको एक छोटा तात्पर्य था चक्रवर्ती बात का, उसके अंदर कुछ हाँ नित्य मुक्त छह का 46 है ज्ञानिभ्यो अधिको नहीं छह लेकिन ये जो श्लोक है ना चांदोग्य उपनिषद का इसका अनुवाद में थोड़ा सा ये है क्योंकि ये तत्व तो एक ही है तीन वो क्लियर है वो ब्रह्मन परमात्मा भगवान जैसे 17वां श्लोक में परमात्मा और ब्रह्म का निरूपण किया गया है 18वां श्लोक में भगवान का निरूपण किया गया है। परमात्मा यो लोकत्रयम् आवेश्य ये ब्रह्म तत्व का आ गया है ऐसा विश्वास ठाकुर की कम है। ये 18वां श्लोक में परमात्मा ब्रह्म भगवान का निरूपण किया गया है। इसमें जो ये जो श्लोक है ना वो चक्रवर्ती कोट नहीं करते हैं चांदोग्य उपनिषद का। इसका जो अनुवाद में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है उसका देखिए ना क्या
हाँ
तो इधर पक्का ये सोल है, सुपर सोल नहीं है ना, अनुवाद
पक्का
नहीं नहीं देखिए ना, अर्थ अनुवाद मतलब यही है ना, अभी ये प्रभुपाद जी जो अनुवाद देते हैं, ये जो द सुपर सोल कमिंग आउट ऑफ द बॉडी लिखा है, सुपर सोल है, सोल है, हाँ इंग्लिश में सुपर सोल लिखा है, सोल है, ये सुपर सोल में थोड़ा प्रॉब्लम है, सोल है, वो ऐसा सुनना चाहिए, ये जो है ना इसका सिंटैक्स एरर है। हरी बोल, इसमें क्या है देखो, इसमें थोड़ा सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स मतलब एक है परमात्मा, वो सुपर सोल हो गया, एक है आत्मा जो परम है, तीनों गुणों से परे है, परोपि मनुते, तो ये जो है ना वैसा का वैसा रह गया, कंफ्यूज नहीं होना है कि जब अनुवाद में जब ऐसा दिया जाता है ना, मैं भी इसको परसों इसको देख रहा था कि ये श्लोक के ऊपर मैं अनुवाद इतना ध्यान से नहीं पढ़ा। जनरली क्या है ना, मेरा स्वभाव ये है, प्रभुपाद जी का वो तात्पर्य वो पार्ट या कोई आचार्य ने उल्लेखन किया है वही चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते, मैं उसको उल्लेखन करता रहता हूं, और प्रभुपाद जी अपने से जो लिखे हैं वो मोस्टली कॉन्टेम्प्ररी है, कॉन्टेम्प्ररी मतलब आजकल के लोगों के लिए जैसे जरूरत है वो चीजें रहता है, तो उसको थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन ये मैं विश्वनाथ ठाकुर बल्लभ जी जो विषय ने प्राप्त नहीं किया, मेरे पास वो कॉमेंट्री जो अभी है देखना पड़ेगा, रामानुजाचार्य में है क्या, आई हैड टू सी दैट। ये थोड़ा इस पे कंफ्यूजन है,
आत्मा को परम इसलिए कहा गया कि वो परम का अंश है, उस दृष्टि से आत्मा ही समझ ले सकते हैं, उसी आत्मा को परम पुरुष से कहा जा सकता है।
और ये श्लोक इधर कोट भी क्यों किया गया वो भी मुझे थोड़ा सा जब स्पष्ट है, मैं इज वेरी क्लियर, हाँ उपनिषद देखना पड़ेगा, और ये भी बलदेव विद्याभूषण में भी नहीं है, और ये भी नहीं, रामानुजाचार्य देखना होगा बस, और इसका अनुवाद वगैरह। ठीक है, ये देखिए ये जो पैराग्राफ है ना, जस्ट मार्क इट एंड कीप इट, कभी और उसका क्लैरिफिकेशन कभी किया जाएगा, एरसी, लेकिन इतना तक है कि ब्रह्मन परमात्मा भगवान ये तीन चीजों का निरूपण हुआ है ये श्लोकों में, और यही जो परम सत्य है, यस्मात् शरम अतीतो हम अक्षरात्मा, दोनों प्रकार का जीव शर और अक्षर ये दोनों से परे हूं। यो लोकत्रय माविश्य, लिंक यही है, पहला श्लोक 16 का में क्या कहा गया है, दो प्रकार के जीव है, ठीक है, 17 श्लोक में क्या कहा गया है, ये तीनों से परे, दोनों से परे और एक पुरुष है जो परमात्मा कहलाता है, ठीक है, और यही परमात्मा,
वही परमात्मा का 17 श्लोक में जो साक्षात अविनाशी भगवान है जो तीनों लोगों में प्रवेश करके उत्तम है, तीनों लोग कहां से,
अभी पहला लाइन क्लियर हो गया, उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मा जो अर्थ है ये हो गया, और यही परमात्मा ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में तीनों लोकों में आविश्य, तीन ऊपर के बीच बहुत जगत में हर जगह ब्रह्म के रूप में व्याप्त है,
हाँ हाँ
अपना स्वभाव बता रहे, परमात्मा का स्वभाव का वर्णन है। ये जो परमात्मा है तुदावृतः, ये कौन, ये क्या कर रहे हैं परमात्मा? तीनों लोकों में पालन कर रहे
हैं
नहीं हाँ। और 18 श्लोक में भगवत तत्व का निरूपण हो रहा है, क्या है वो? यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि उत्तमः, के क्षर और अक्षर से परे हूं और उत्तमा। आतोस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तमा, और मैं कौन हूं? पुरुष उत्तम पुरुषोत्तम, जो पहले परमात्मा करके वर्णन किया गया है लोकत्रयांश, उनका भी मैं श्रोत हूं। ऐसा यानी दो प्रकार के जीवों से भी परे हूं मैं, परमात्मा मैं भले ही मैं भगवान, और भगवान के रूप में ये दोनों परमात्मा और ब्रह्म का भी मैं आधार। श्री कृष्णा ठाकुर ये पूरा अध्याय का सार यही लिखते हैं, ये वेदांत का सार ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण दोनों प्रकार के जीव नित्य मुक्त नित्य भक्त से परे हैं, परमात्मा और ब्रह्म का भी आधार है। That is the sum and substance of the 15th chapter. लेकिन इसलिए किया है कि अगर कोई सोचने लग जावे कि वो मुक्त होने के बाद वो परमात्मा बन जाता था, ये जो द्वैत द्वैत है, ये जो तीन श्लोक है द्वैत सिद्धांत को स्थापना कर रहे हैं। परमात्मा और आत्मा दोनों में द्वैत है, यानी दोनों डिफरेंट है, इस बात को स्थापना करने के लिए। अगर कोई कहे कि अक्षर होना मतलब परमात्मा बन जाना या भगवान बन जाना, तो मुक्त होने के बाद भी भगवान जीव मुक्त जीव से भी परे है ना, उस बात को कैसे बताएंगे फिर? हाँ और ये हाँ वो लास्ट में उपनिषद जो कोट किया ना, मुझे स्वयं ये दोनों आचार्य से मिला नहीं, तो मुझे रामानुज का देखना पड़ेगा। इफ आई हैव टू सी दैट रामानुज, कभी कभी क्या है श्रील प्रभुपाद जी जो भी श्लोक कोट करते हैं 90% मेरे अनुभव से ये है, या बलदेव विजयलक्ष्मी की टीका में रहेगा, विश्वनाथ ठाकुर की टीका में रहेगा, या रामानुजाचार्य की टीका में रहेगा, वही श्लोकों को सीधा उठा के रख देते हैं। हाँ हाँ बहुत जगह हाँ ये पढ़ता हूं सुनिए। As stated above, the understanding of Purushottam Yoga, we have to be sinless. Thus, this chapter discusses breaking our material attachment, understanding Krishna as source of Brahman and as the maintainer, the Paramatma, and as Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Finally, knowing this, one surrenders and becomes one with the desire. One with him in desire and service. This is the conclusion of all the shastras, the yoga supreme person. Vishnu Thakur ka commentary ka summary ke dete hai ki Brahm, Bhagwan jo hai, Brahm aur Paramatma ka shrot hai, aur saath saath mein wo tino jeev, tino prakar, dono prakar ke jeev hai, wo dino se pare hai. Ye summary hai. Yeah, this is the conclusion of Vishnu Thakur. तो ये बात को जानने के लिए व्यक्ति को अनघा, ये आखिरी श्लोक है ना 20वां श्लोक, उसके अंदर अर्जुन को अनघा करके संबोधित किया गया। 19 पढ़ेंगे ना। यो मामे सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् सा सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि असम मूढ़ो, बिना कंफ्यूजन के, बिना मोह के कि मैं पुरुषोत्तम हूं, वो सर्वविद, वो सब कुछ जानता है और जानते हुए मेरा भजन करता है। ही स्टार्ट्स डूइंग माय भजन। सर्वविद, सब कुछ जान लेता है। तमेव विद्वानेति मृत्युमेति नान्य पंता विद्यते अयनाय अयनाय विद्यते यस्वि विज्ञाते सर्ववेवं विज्ञातं भवति। ये उपनिषद को श्लोक है। यस्मिन् विज्ञाते, एक बार उनको जानने के बाद सर्ववेवं विज्ञातं भवति, एक जगह है। दूसरा श्लोक है उपनिषद का, तमेव विद्वान एति मृत्युमेति, ये बहुत जगह कोट किया गया है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातं भवति, एक है। दूसरा है तम एव विद्वान, फोर चैप्टर नाइन श्लोक का तात्पर्य देखिए। नहीं, फोर चैप्टर का नाइन श्लोक, तात्पर्य में तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपंत्या विद्यते अयनाय, ये है। सिक्स फिफ्टीन छठा अध्याय का पंद्रहवां श्लोक, है ना। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, हाँ वही है, वही चीज है, बहुत जगह कोट किए हुए। आपको कोटेड वर्सेस इंग्लिश बुक रखिए हमेशा ना, कोई भी श्लोक भगवद गीता में प्रभुपाद जी कहां कोट के मिल जाएगा, ये है ना। लास्ट में जितना है प्रभुपाद जी ने परपोट में कोट किया है ना श्लोक, जितना भी श्लोक प्रभुपाद परपोट ने कोट किया है वो सारे श्लोक इंडेक्स है। वो भी होना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा मुझे। उपनिषद का है वो, जब आप ये यावन में बैठते हैं तो सुनाई पड़ता है। ठीक, लास्ट श्लोक पढ़िए। मयानगा विद्यमान स्यात् बृहदृद्धस्य भारत। जो भी व्यक्ति इस शास्त्रों को पढ़ता है वो बहुत बुद्धिमान होता है और हर एक कार्य का सिद्धि को प्राप्त करता है। और रूपा जी इसमें लिखते हैं वर्ड अनघा हो सिनलेस पाप रहित व्यक्ति। अनघा शब्द अर्जुन के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं, हे अर्जुन लोग पाप हृदय दौर्बल्य की वजह से करते हैं, वीकनेस ऑफ हार्ट। प्रभुपाद जी तात्पर्य के आखिरी में लिखते हैं पहले की पांच श्लोकों में भगवान हृदय दौर्बल्य जिसकी वजह से व्यक्ति पाप करता है उसको काटने का साधन बताते हैं, बाकी पूरा अन्य 15 श्लोकों में पुरुषोत्तम योग का वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम योग का सार यही है, भगवान श्री कृष्ण दोनों प्रकार के जीव जो नित्य बद्ध है नित्य मुक्त है उनसे दोनों से परे हैं, यही नहीं ब्रह्म और परमात्मा का भी स्रोत है। दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ विश्वनाथ तीर्थ ठाकुर कमेंट्री। अनघा माया अनुवाद पढ़ी ना पता लगेगा। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए क्लियर। और पुरुषोत्तम योग का मेन पॉइंट ये है, द लास्ट पॉइंट विश्वनाथ ठाकुर कमेंट्री का, दोनों प्रकार के जीव से भगवान परे हैं और साथ साथ में ब्रह्म और परमात्मा का भी वो बेस। नहीं 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 माता जी, मेरे द्वारा वो दूसरी चीज को लगता है, जैसे इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मयानघा इदम उत्तम इदम उक्तम मेरे द्वारा कहा गया है मेरे द्वारा
तो ये दो चीजें तो बता रहे भगवान, पहला पतंग का प्रकृति को प्रबंध जताने का, दूसरा हृदय दुर्बल। दोनों चीजें क्यों बना रहे?
क्योंकि हृदय दौर्बल के द्वारा व्यक्ति पाप करता है, पाप मतलब इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति तभी करेगा जब उसके ऊपर प्रभुत्व होगा।
दो कारण मतलब क्या संबोधन करने की, दो कारण के कारण भगवान भक्ति में नहीं रखता।
हाँ, जब तक वो हृदय दौर्बल्य रहता है तब तक वो ये पुरुषोत्तम योग को नहीं समझ सकता है। हृदय दौर्बल्य को त्याग करने के लिए भौतिक जगत क्या उसका वर्णन किया, पहले उसको जानना होगा ये भौतिक ये जो उससे मुझे जाना है, और इतना ही नहीं उसको काटना होगा, वो काटने के लिए परम पुरुष का शरणागत होना होगा, शरणागत होने के लिए उनको ये शरणागति विधि पालन करना होगा। तो भगवान का शरणागत होते हुए जो असंग शस्त्रेण वैराग्य को प्राप्त करता है वही वैराग्य स्थाई है, ये बात बोला नहीं, ये भी श्री विश्वनाथ ठाकुर अपने कॉमेंट्री में उल्लेखन करते हैं कि ये पहला पांच श्लोकों का भगवान का मूल भाव यही है, त्वमेव चाद्यम शरणम प्रपद्ये, है ना वो श्लोक है ना, त्वमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, पुरुषम प्रपद्ये शरणागति, उसके द्वारा क्या प्राप्त होता है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये भक्ति से उत्पन्न हुआ वैराग्य ही स्थाई ही है। पुरुषोत्तम को जानना, भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानना इज बियॉन्ड, पहले ही बताया हुआ है जीव और परमात्मा के जो द्वैत है उसी को इधर क्लियर कट बिना कोई इंटरप्रिटेशन के बिना without any scope for interpretation, 15th chapter kaha gaya. जनरल इंडेक्स में मान लीजिए कि आपको मेटीरियल नेचर के बारे में प्रभुपाद जी कहां क्या चीज लिखे सब जानना है. मेटीरियल नेचर करेगा रहेगा पूरा लिस्ट रहेगा उसके अंदर. भीष्मदेव के बारे में भगवत गीता में प्रभुपाद जी जहां जहां कहा है वो सब लिस्ट आ जाएगा. ठीक है, हरे कृष्ण.